وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی, کون سی؟ تورات. وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ, اور ان کے بعد بہت سارے رسول آئے. کون سے رسول آئے؟ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی ہارون علیہ السلام آئے, ذوالکفل آئے, پھر عزیر علیہ السلام, الیاس علیہ السلام, یونس علیہ السلام, داوود, سلیمان, یحییٰ, زکریا, عیسیٰ علیہ السلام, کتنے سارے رسول آئے, یونس علیہ السلام, یسیٰ علیہ السلام, تو بہت سارے رسول آئے. وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات, اور آخر میں ان کے اندر عیسیٰ علیہ السلام آئے. آپ کو پتہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام, جن کی آگے نسل سے یہ بنی اسرائیل ہیں, اور انہی میں سارے رسول آئے سوائے ایک رسول کے, اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. اب ان میں لاسٹ میں کون آئے؟ عیسیٰ بن مریم. ان کو اللہ تعالیٰ نے روشن نشانیاں دی, یعنی معجزات دیے, اور آپ کو پتہ ہے کتنے سارے معجزات, گھوڑی کو ٹھیک کرتے تھے, اندھے کو صحیح کرتے تھے, مردہ کو اللہ کے حکم سے زندہ کرتے تھے. وہ ایدنا ہو بھی روح القدس, اور ان کو روح قدس سے, روح قدس کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام, ان سے تائید کی گئی, ان کو روح القدس کہا گیا, ان سے تائید کی گئی کہ جب جبرائیل علیہ السلام نے آ کے پھونک ماری تھی حضرت مریم کے دامن میں, تو عیسیٰ علیہ السلام سے حمل ٹھہرا تھا, پھر اس کے بعد بھی وہ جبرائیل علیہ السلام کی مدد سے انہوں نے کلام کیا تھا پنگوڑے میں, اور اس کے بعد بھی جبرائیل علیہ السلام نے ان کی مدد فرمائی, اور جب ان کو اٹھایا گیا آسمان پہ بھی تو بھی مدد فرمائی. اَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ, جب کبھی بھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا, بِمَا لَا تَهْوَى اُنْ أَنفُسُكُمْ, جو تمہاری خواہشات کے خلاف تھا, جو تمہاری یعنی چاہت کے خلاف تھا, یعنی ایسے رسول کے جو وہ پیغام لے کر آئے جو تمہیں پسند نہیں تھا. آپ دیکھیں کوئی آپ کو کوئی ایسی تعلیم دے, ایسا حکم دے جو آپ کو پسند نہیں ہے, آپ کی خواہش کے الٹ ہو, تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کو غصہ آ جاتا ہے, کیوں یہ کیوں کہہ دیا, اچھا نہیں لگتا. تو یہاں پر یہ نہیں تھا کہ ایک طرف دنیا ایک طرف دین ہے, یہ نہیں تھا, ایک طرف دین اور ایک طرف دل. ایک طرف دل, میرا دل کیا چاہتا ہے. جب یہ مقابلہ ہوا کہ ایک طرف دین ایک طرف خواہش, بما لا تہوا انفسکم, دل کی خواہش. اب جب نہیں پسند آتا کوئی چیز, ایسی نہیں پسند آتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آئی ہے وہ نہیں پسند آتی, اور اس کی وجہ کیا ہے کہ میری خواہشات کے راستے میں یہ رکاوٹ ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان بہانے ہی بناتا ہے, پھر کچھ نہ کچھ ایکسکیوزز, دیکھو ایسے نہیں تو ویسے, ویسے نہیں تو ویسے, یہ وجہ ہے وہ وجہ ہے, کیا کریں, بڑی مجبوری ہے, کیا کریں, کیونکہ اپنا دل نہیں چاہ رہا ہوتا, دل نہیں چاہ رہا ہوتا. پھر کبھی جیسے خواتین کہہ دیتی نا, ایک مثال سے سمجھے, خواتین کیا کریں, ہسبینڈ نہیں مانتے, ہسبینڈ نہیں مانتے, ویسے تو ہر خواہش ہم ہسبینڈ سے منگوانے کا ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح کرنا, کیا کریں, خاندان میں میرے سسرال والے نہیں ہیں کرنے دیتے, کیا کریں, پھر مجبوری ہے, جاب پہ بھی تو جانا ہے, کیا کریں. اپنی دل اپنا نہیں مانتا, من اپنا پرانا پاپی ہے, برسوں میں نمازی بن نہ سکا, اپنے اندر ہے جو مسئلہ ہے, اور نہیں ہوتا باہر کچھ. تو پھر تم نے کیا کیا, بیما لاتا وہاں انفسکم, استکبر, تم تکبر کرنے لگے. تکبر کیا ہوتا ہے؟ حق کا انکار اور لوگوں کو حقیر جانا. کیا حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جانا, یہ حق کا انکار ہی ہے نا, کہ جب یہ اپنے آپ کی بات اتنی بڑی سمجھنا کہ نبی کی بات کو بالکل ٹھکرا دینا کہ یہ تو نہیں ہم مانتے, ہمیں نہیں, ہم نہیں اس کو صحیح سمجھتے ہیں, ہم نہیں اس کو مانیں گے, اور آگے بات آ رہی ہے وہ بھی نہ ماننے کی جو بات ہے, تکبر کیسے وہ کرتے تھے. اگر تو اپنی خواہش کی تکمیل ہو رہی ہے, اس سے میچ کر رہا ہے نا اللہ کا حکم, تب تو مان لیا, اور اگر خواہش کے الٹ ہے تو پھر ایک تو چیز چھوڑنی پڑے گی, یا تو دین چھوڑیں گے یا خواہش چھوڑیں گے, تو پھر دین چھوڑ دیتے ہیں, دل نہیں توڑ سکتے ہم اپنا. کیونکہ کچھ تو چھوڑنا پڑے گا, تو دین ہی اتنی فالتو چیز ہے, اس کو چھوڑ دیتے ہیں, خواہش کو نہیں چھوڑتے ہیں. तो जब भी नबी वो चीज लेकर आए जिसका इनको दिल नहीं चाहता था, तो इन्होंने सीधा सीधा इनकार कर दिया, तकब्बुर किया, अपने आप की बात को बड़ा समझा। बतरुल हक व गामतुन नास, ये इसकी डेफिनेशन लिख लें, बतरुल हक के हक को इनकार और गामतुन नास लोगों को हकीर समझना। इन्होंने समझा कि नबी की बात को कुछ नहीं समझा, अपने आप की बात को बड़ा समझा और इनकार कर दिया। उन्होंने समझा कि हम इन बातों से भी ऊपर हैं, हमारी अकल ज्यादा ऊपर है। फरीकन कज़्ज़बतुम, एक फरीक को तो तुमने झुठला दिया, व फरीकन तक्तुलून, और एक फरीक को तुम कत्ल करते रहे। अब होना तो यहां पर था कि फरीकन कज़्ज़बतुम, फरीकन कत्ल तुम, इसके साथ ही मैच होना था, लेकिन तक्तुलून आया, करते रहे तुम यही काम, यानी तुमने इसी कोशिश में लगे रहे। जिनको तो कत्ल कर सके, जकरिया और यहया अलैहिस्सलाम को तो कत्ल भी कर दिया, ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ से तो कत्ल कर दिया ना, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इन्होंने ऐसा किया था कि ये एक कबीला यहूद का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर गया कि हमारे दरमियान कोई फैसला करते हैं, और फिर उनको किले के दीवार के साथ बिठा दिया कि आप यहाँ पे बैठे, अभी आते हैं। ऊपर गए और चक्की का पार्ट लेके उन्होंने सोचा हम ऊपर से फेंकेंगे, नीचे कुछ ले जाएंगे, उतना वो हैवी होता है वो जो पत्थर की सेल होती है, जो चक्की की होती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राईल अलैहि सलाम आए और आपको इतला दे दी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन वहां से उठ गए। इसी तरह आपको पता है खैबर में वो यहूदी औरत ने बकरी का गोश्त लेकर आई है और उसके अंदर जहर मिलाया हुआ था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाके पेश किया, और उसकी अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठाया दस्ती का गोश्त, उठाया और खाना शुरू किया, फिर एकदम आपने सहाबा से फरमाया खाने से हाथ उठा लो और यहूदी औरत को बुला के लाओ। जब वो आई तो फरमाया तुमने इस गोश्त में जहर मिलाया। उसने कहा आपको किसने खबर दी है? आपने फरमाया बकरी के इस हाथ ने जो मेरे हाथ में है ना, इस दस्ती ने मुझे खबर दी है। उसने कहा हाँ मैंने मिलाया तो है, तो वो इसलिए मिलाया था कि अगर आप अल्लाह के नबी होंगे तो आपको कुछ नहीं होगा, और अगर आप नहीं होंगे तो आप फौत हो जाएंगे, और जो सहाबी जिन्होंने खाया था वो फौत हो गए। इस जहर को निकालने के फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शाने से खून निकलवाया था, हिजामा कराया था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मरजुल मौत में थे तो फरमाते हैं कि खैबर में वो जो जहर आलूद लुकमा मैंने अपने मुंह में रखा था, उसकी तकलीफ आज भी मुझे महसूस हो रही है, और मुझे ऐसे मालूम हो रहा है जैसे मेरी शहरग इस तकलीफ से कट जाएगी। ये बुखारी में है, इतनी ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ हुई थी, और ये उस जहर की वजह से। इतनी दुश्मनी थी इनको, क्या उनको पैगंबर कहते थे, हक का रास्ता ही दिखाते थे ना, लेकिन जब इंसान की ख्वाहिश के खिलाफ हो ना, तो उसको दिल करता है इसको मार ही दें, ना रहेगा कांटा तो फिर हमें भी कोई नहीं होता ना, वही जो मुहावरे हैं कि भाई मतलब है कि इनको रास्ते से हटा दो तो हमें कोई कुछ कहने वाला ही नहीं होगा। यहूद का अंबिया के साथ ऐसा ही रवैया रहा है। और हाँ, तौरात को लेके अपने साथ साथ रखते थे कि ये बड़ी बाबरकत किताब है, ये हमारी अजमत की, हमारी कामयाबी की अलामत है। जैसे आज भी कुरान को तो लेके बैठे हुए हैं, दुल्हन को नीचे से गुजारते हैं कि ये कुरान से बरकत हो जाएगी हमारी बेटी के घर में। इसी तरह यहूद तौरात वो रहनुमाई की किताब नहीं समझते थे कि इससे हम हिदायत ले लेंगे, बस बरकत ही बरकत है जी। अल्लाह अकबर। वकालू कुलूबुना गुल्फ, वो कहते हैं हमारे दिल गिलाफों में है, हमारे दिल तो गिलाफ में है। इसके कई माने हैं असल में, वो गिलाफ में जो कहते थे ये एक वर्ड अल्लाह ताला ने बयान फरमा के उनकी सारी बात बता दी कि क्या उनका मतलब था गिलाफ में कहने का, कि जो उनके सारे बहाने थे ना कि हम क्यों ये नहीं मानते, क्या वजह है हमारे ना मानने की, वो ये गुल्फ के लफ्ज के अंदर है। नंबर वन वो कहते थे, तीन बातें मैं इसमें आपको बताऊंगी। नंबर वन वो कहते थे हमारे दिल लिपटे हुए ना, तुम्हारी बात हमें समझ ही नहीं आती क्या करें। जैसे कुछ लोग कहते हैं कुरान हमें समझ ही नहीं आता, हम क्या करें ना, बस समझ ही नहीं आता, बड़ा ही मुश्किल है, समझ नहीं आते, कुछ बात यहाँ पे की गई होती कुछ वहां पे। वो कहते थे हमारे दिल तो खिलाफों के अंदर, हमें तो समझ ही नहीं आती भाई तुम्हारी बात, इसीलिए हम हिदायत भी चल ही नहीं सकते, या कोई असर नहीं है हमारे दिलों में। नंबर टू बिल्कुल उलट बात, कि हमारे दिल तो इल्म और हिकमत से इतने भरे हुए हैं, इतने पुर हैं कि ऐ मोहम्मद तुम्हारी बात की तो गुंजाइश है ही नहीं। यानी फेल हैं हम, हमें हमारे हमें सारा कुछ पता है। तुम क्या बात करते हो, हमें सब कुछ पता है। हम मतलब है कि तुम सोचते हो कि हमें नहीं पता। हमें क्या सिखाएगी ये किताब, हमें तो पहले ही सब आता है। हमारे इब्ने अब्बास फरमाते हैं, वो कहते थे हमारे दिल तो इल्म के मखजन है, यानी खजाने हैं इल्म के, खजाना हमारे पहले ही इल्म और मार्फत से भरे में, लिहाजा इल्म मोहम्मद के लिए इसमें कोई गुंजाइश नहीं। अल्लाह अकबर। ऐसे हमारे भी लोग, यही तो मुझे दुख होता है कि हर बात ऐसी है कि जैसे हमारी बातें की जा रही हैं। मुझे तो ऐसे लगता है कि उनकी नहीं बात हो रही, हमारी बातें की जा रही हैं। जैसे बाज लोगों को कहते हैं ना कुरान की तरफ आए, तो वो कहते हैं हम तो पहले ही पढ़े हुए हैं, हमें कुरान पढ़ने की क्या जरूरत है, हमें पहले ही सब कुछ आता है। यानी वो ये नहीं समझते कि कुरान उनकी कोई रहनुमाई करेगा या कुरान उनको कोई ऐसी बात बताएगा जो उनको पहले नहीं पता। कौन सी ऐसी खास बात है जो कुरान ने हमें बता देनी है, क्योंकि वो कुरान को रहनुमाई के लिए जरूरी समझते ही नहीं, उनको रहनुमाई की जरूरत है ही नहीं। कहते हमें पहले ही सब पता है, इसकी तरफ आने बगैर ही उनको सब पता है। आज तक कुरान नहीं पढ़ा लेकिन सब पता है हमें। कितने दावे होते हैं ना। और शायद हम भी जब कुरान की तरफ नहीं आते तो हम भी यही समझते हैं कि क्या होगा इसके अंदर, पुराने लोगों की पता नहीं बातें ही हैं, ऐसे ही बातें, ये इधर की उधर की, जन्नत जहन्नुम की बातें, बस सारा हमें पहले ही पता है, कौन सा हमें नहीं पता। तो अपने कानों से सुनी हुई बातें हैं। अल्लाह अकबर। तो वो कहते हैं आप ऐसी कौन सी नई बात हमें सिखा देंगे, कभी आपने ये बात सुनी? तो वो कहते थे कालू कुलू गुना गुल्फ, तो ये इल्म से भरे हुए हमारे दिल। नंबर थ्री, इसका गुल्फ का माना क्या? वो कहते थे इसमें कोई माकूलियत की बात ही नहीं है, मतलब कोई लॉजिक नहीं है। हम लॉजिक वाले लोग हैं, देखो जो अक्ल के अंदर बात समाए ना, हम तो उसको मानते हैं भाई। ये इलॉजिकल बातें हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह नऊज़ुबिल्लाह, हम नहीं इनको मान सकते। तो इन तीनों बातों को कहा गया, ये डिफरेंट किस्म की वो बातें करते थे ना, इन तीनों बातों को कहा गया, वो कहते हमारे दिल गुल्फ है, गिलाफों में है, यानी महफूज है बिल्कुल। आज इसी आयत को अपने ऊपर जरा थोड़ी देर के लिए रख के देखे, जो मैंने नंबर थ्री बात बताई है, पहली भी दो बातें मैंने आपको बता दी, वो भी सेम है जो हमारे पास है। नंबर थ्री बात को भी सुन ले, जो मैंने आपको कहा है कि वो कहते हैं कि इसमें कोई लॉजिक नहीं। आज कभी आपने सुना है लोगों को कहते हुए कि ये तो जमाना लॉजिक का है, ये मौलवियों की बातें, दे डोंट मेक एनी सेंस। वो लॉजिक की बात करो, यानी उनका क्राइटेरिया क्या है हक को मानने का, कुरान की तरफ, कुरान की बात या हदीस की बात, कि डज इट मेक सेंस और डज इट नॉट मेक एनी सेंस, ये उनका क्राइटेरिया। मेक सेंस करेगी तो मानेंगे, अगर हम मेक सेंस नहीं करती तो फिर हम नहीं मानेंगे। यानी तुम्हारी मेक सेंस, तुम्हारी सेंस ही अगर क्राइटेरिया है और तुम्हारी सेंस ही इतनी बड़ी चीज है कि उसके ऊपर कोई चीज पूरी आती है तो तुमने मानना है, तो फिर तुमने तो अपनी सेंस को ही मानना ना, फिर तुमने कुरान को तो नहीं माना। क्या ये तकब्बुर नहीं है? और तकब्बुर क्या होता है कि मेरी अकल इतनी बड़ी चीज है और मुझे तो, आप जैसे लोग कहते हैं ना, मुझे तो तुम्हारी बात समझ ही नहीं आती, पता नहीं तुम क्या कह रही हो, इसमें भी क्या तकब्बुर है ना ये। अब आप चलो हम इंसानों को ऐसे कह दें तो ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता किसी की ना बात समझ, मगर अल्लाह की बात को ऐसे करना, रसूल की बातों को ऐसे कहना, मुझे तो नहीं समझ आती ये क्या है। क्योंकि हम समझते हैं कि हमारा दिमाग ही इतना ऊंचा है कि हमारी अकल में बात अगर नहीं आई और हमारी अकल की सतह के मुताबिक नहीं है तो फिर हमारे लेवल की वो बात नहीं है, फिर हम नहीं मानते इसको। यही तो कुफर है फिर, मेरी अकल में आएगी ये हदीस तो मैं मानूंगी, अगर मेरी अकल में नहीं आती तो फिर मैं नहीं मानूंगी। दिस ये हदीस डजंट मेक एनी सेंस टू मी, अस्तग़फिरुल्लाह, तो मैं फिर नहीं मानती। और वो भी समझते थे ये बड़ी काबिले फख्र बात है, और आज भी समझते हैं बड़े इंटेलेक्चुअल होने की निशानी है कि हमें तो हमारे लेवल की नहीं ये बातें, ऐसी मौलवियों की बातें, मुझे तो समझ ही नहीं आती इनकी बातें। अस्तग़फिरुल्लाह, बल्लानाहुमुल्लाहु बिकुफ्रिहिम, अल्लाह ताला ने फरमाया ये कुफर है, इसको कुफर कहा गया। तो बदबख्तो लानत है अल्लाह की कि इस कुफर की वजह से जो तुम कर रहे हो, ये कुफर है ये कहना कि हमारे दिल तो भाई गिलाफों के अंदर है। फकली लम्मा युमिनून, कितना थोड़ा है जो ये ईमान लेकर आते हैं, या कितने थोड़े हैं इनमें से जो ईमान लेकर आते हैं, दोनों मानी। तो इसका मतलब है कि दिल पे अगर नसीहत अमल असर नहीं कर रही और लगता है कि दिल बंद हुआ पड़ा है, वही मुझे बात ही नहीं समझ आ रही, तो इंसान को फिक्र करनी चाहिए क्योंकि ये लानत की कैफियत तो नहीं हो गई। बल रान आला कुलूबिहिम, रान जंग होता है, उनके दिल जंग आलूद हो गए हैं फिर। और इसका इलाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया था, मौत को कसरत से याद करना और कुरान की तिलावत। वलम्मा जाअ हम किताबों में अंदिल्ला, और जब उनके पास आ गई एक किताब अल्लाह की तरफ से, कौन सी किताब, ये कुरान, यानी पहले उनके पास तौरात आई, इंजील आई, इतने सारे पैगंबर आए, अभी आखिरी नबी और आखिरी किताब आ गई है। आखिरी किताब जब आ गई, मुसद्दिकुन लिमा माअहुम, जो तस्दीक करती है जो उनके पास है, इसका क्या माना है, वेरीफाई करती है उसको जो तौरात में है। माअहुम का मतलब उनके पास जो है, यानी उनके पास तौरात है, तो तौरात की को वेरीफाई करती है। कैसे, नंबर वन कि कुरान प्लेनली कहता है, क्लियरली कहता है कि तौरात और इंजील अल्लाह ताला का कलाम है, वो अल्लाह की तरफ से आई है, तो उनकी तस्दीक की। नंबर टू, जो बातें उसके अंदर हैं कुरान उनकी तस्दीक करता है, जो अल्लाह ताला की तरफ से आई थी, इन्होंने खुद नहीं शामिल की नहीं, उनको सच कहता है। जैसे आपने पिछली रुकू के अंदर पढ़ा है कि अल्लाह ताला ने उनसे ये अहद लिया, कुरान ने भी इसको एंडोर्स किया है, इसको मानना है, उनसे अहद लिया गया था, लेकिन कुरान उन्हीं की तायीद कर रहा है ना, इसकी इसको बात को वेरीफाई कर रहा है। तो ये नहीं कहता कि वो सारे गलत। अब पहले हमारे तो हाँ ये होता है ना कि एक बंदा है तो दूसरा आ जाता, कहता उसको तो ना मानो, मेरी मानो। अब मैं हूं, इलेक्शन में सियासतदान खड़े होते हैं, क्या करते हैं, दूसरे पे कीचड़ उछालते हैं, कहते हैं अब मैं सही हूं, वो सारा गलत था जो पहले था, उसको वोट ना देना, मुझे देना। तो कुरान ये नहीं कहता ये मुझे मानो, पीछे सारों को छोड़ो, वो कहता है वो भी अल्लाह की किताबें थी, उनके अंदर जो चीजें सही है कुरान ने उनको मेंशन किया है। कितनी जगह कुरान के अंदर है कि बनी इसराइल के ऊपर ये आया, बनी इसराइल के ऊपर ये हुक्म आया, उनको ये दिया गया हुक्म, ऐसे नहीं कहता वो सारा गलत था। हाँ, जो उन्होंने गलत किया उसके अंदर चीजें ऐड की हैं, उनको कहा जाता है कि तहरीफ किया। वकानू मेरे कबलू यस्तफ्तिहूना अल्लदीन कफरू, हालांकि वो इससे पहले फतह की दुआएं करते थे खिलाफ काफरों के। यानी क्या होता था कि जब यस्तफ्तिहूना का एक माना तो यह है कि दुआएं किया करते थे, दुआएं मांगा करते थे, क्यों, इसलिए कि जब यहूदियों का मुकाबला मुशरिकीन से होता था, कभी उनके साथ लड़ाई हो जाती थी, तो उनको कहते थे हमारे पास एक नबी आना है, फिर तुम्हें पता चलेगा। बल्कि आसिम बिन आमर कहते हैं, अंसारी हैं, कि हम बुत परस्त थे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात के बारे में हम जितने आगाह हो चुके थे आपकी आमद से पहले, इतना कोई भी नहीं जानता था। किस तरह, कि जब कभी हमारी लड़ाई होती इनके साथ, तो ये आगे से कहते थे कि एक नबी आने वाला है, उसकी खसूसियात बताते थे, उसमें ये सिफात होंगी, इनको हाल हुलिये तक पता थे, और तब हमें फतह हासिल होगी। और इनके बताने की वजह से हम अच्छी तरह आगाह हो गए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। और अजीब मामला है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो उन्होंने इनकार कर दिया। और आप देखें इसकी एक मिसाल ये, हजरत सफिया जो थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जौजा मोहतरमा, हजरत सफिया खुद बयान करती हैं कि इनके वालिद जो यहूदी सरदार था, तो कहती हैं कि ये और आलिम भी था, यहूदी आलिम की बेटी थी, और एक दूसरा यहूदी जो इनका चचा था, फरमाती हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए तो मेरे बाप और चचा दोनों आपसे मिलने के लिए गए। बड़ी देर तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने बातचीत की, फिर जब घर वापस आए तो मैंने अपने कानों से दोनों की बातें सुनी। चचा ने कहा, क्या ये वाकई वही नबी हैं जिनकी खबरें हमारी किताबों में दी गई हैं? तो वालिद ने कहा, खुदा की कसम हाँ ये वही है। चचा ने कहा, क्या तुम इसका यकीन है तुम्हें? वालिद ने कहा हाँ। चचा ने कहा, फिर क्या इरादा है? वालिद ने कहा, जब तक मेरी जान में जान है मैं इसकी मुखालफत करूंगा और इसकी बात चलने नहीं दूंगा। इब्ने हशाम में ये रिवायत मौजूद है। तो उन्होंने पहचान लिया था, अच्छी तरह पहचानते थे और अच्छी तरह जानते थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया फलम्मा जाअहुम आरफू, जब उनके पास वो आ गया जिसको उन्होंने पहचान लिया। अब पहले क्या है कि दुआएं मांगते थे, दुआएं भी मांगते थे, और फिर यस्तफ्ती होना का मतलब ये भी है कि खबर देते थे लोगों को कि वो एक आने वाला है, बस वो उसके आने का टाइम करीब है, फिर देखना जरा हम फाते होंगे, फिर ऐसे होगा, फिर फतह हमें मिलेगी। तो जब वो आ गए मां आराफू, जिसको उन्होंने पहचान लिया, किसको, जा आ गया, कौन आ गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उन्होंने पहचान लिया उनको, कफरू भी, उन्होंने इनकार कर दिया। फलानतुल्लाहि अलल काफिरीन, तो लानत है अल्लाह की काफरों के ऊपर, इनको अल्लाह ताला ने यहां पे भी काफिर करार दिया। लानत का माना क्या होता है, अल्लाह ताला की रहमत से दूरी। क्यों, इसलिए कि इन्होंने किसी गलत फहमी की वजह से इनकार नहीं किया, ला इल्मी की वजह से नहीं, मां आराफू, इन्होंने पहचान लिया था, ये अच्छी तरह जानते थे, और कुरान कहता है ये उनको ऐसे पहचानते थे जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। आपको अपना बेटे को पहचानने में कभी भी गलती नहीं लग सकती कि ये पता नहीं मेरा बेटा है भी कि नहीं है, तब भी ये इनकार कर गए, इसलिए इनके ऊपर लानत अल्लाह ताला ने की है। बे समझतरो भी अनफुसहुम, कितना बुरा है जिसके बदले इन्होंने अपनी जानों को बेच दिया। किसके बदले बेचा, दुनिया के, दुनिया हासिल करने के लिए कि हमारी सरदारी ना जाए, फिर हमारी हम यहाँ पे जो बड़े बने हुए हैं वो ना खत्म हो, ये उसके पीछे इन्होंने, यानी एक दुनिया का लालच है ना, इसके पीछे अपनी जानें बेच दी। अल्लाह अकबर, जानों को कैसे बेच दिया, कि जान दे दी ये जान, अब जाए तो जहन्नुम में जाए, जले, लेकिन दुनिया हमारी बच जाए। बेसमश्तरो भी अनफुसहुम अन यकफुरु, के उन्होंने कुफर किया, कैसे बेचा उन्होंने, किस तरह बेचा अपनी जानों को, कि उन्होंने कुफर किया। कुफर करता है जब इंसान, तो अपनी जान को समझ लो बेच देता है, कुछ तो उसके बदले में लेता होगा ना, दुनिया ले लेता है। कुफर किस चीज से किया, बीमा अंजल अल्लाह, जो अल्लाह ताला ने नाजिल किया, ये वही, ये कुरान, बगयन, जिद की वजह से, बगी सरकशी को कहते हैं, बगावत भी इसी से है ना, इनको जिद थी कि ये नबी हमारे में से क्यों नहीं आए, बस इन्होंने ये जिद पकड़ ली, हमारे में से आते तो हम मानते, ये तो यानी बनी इसराइल से क्यों नहीं आए, क्योंकि ये अपने आप को चोजन मान समझते थे, आगे आप पढ़ेंगे, ये अपने आप को समझते थे कि हम अल्लाह ताला के बड़े लाडली हैं, हम बहुत बड़ी चीज हैं, इतना तकब्बुर था इनको, और आज तक इनके अंदर तकब्बुर है। ये तो दूसरों को ना नाम ये लेते हैं कि ये तो कुछ नाम स्पेसिफिक रखे हैं, ये वो लोग हैं, और बल्कि एक मैंने इनका सुना भी था बयान, कि इनके बड़े ने, एक ने कहा कि ये तो जानवर हैं, जानवर, तो ये बाकियों को जानवर समझते हैं, यानी ये ह्यूमन नहीं है, ह्यूमन से लेस है, और असल ह्यूमन हम हैं, इनके अंदर इतनी तकब्बुर है। इसी वजह से आप देखें ना, आप कोई भी यहूदी रिवर्टेड नहीं हो सकता, यानी कोई भी बंदा अगर यहूदी बनना चाहे तो नहीं बन सकता, क्योंकि वो कहते हैं हमारा प्योर ब्लड है, इसके अंदर कोई कैसे आ सकता है। बीमा अंजल अल्लाह बगियन, तो सख्त जिद थी इनको, इस वजह से कुफर किया, किस चीज के साथ किया, जो अल्लाह ताला ने नाजिल किया, किस वजह से किया, जिद की वजह से, क्या जिद थी, अन युनज्जिल अल्लाह मिन फदलिही अला मन यशाउ मिन इबादी, कि अल्लाह ताला ने नाजिल किया, अल्लाह ताला ने नाजिल किया, मिन फदली, अपने फजल से, अला मन यशाउ, ऊपर जिसके उसने चाहा, मिने बाद ही अपने बंदों में से, कि अल्लाह ताला ने ये कुरान उसके ऊपर नाजिल किया है जिसको अल्लाह ताला ने चाहा, तो हमारी चाहत से नाजिल होना चाहिए था, जिसको हम चूज करते, यानी नबुवत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों मिली, हम यानी फैसला करते, या हमें जिस जो पसंद है उसको मिलती नबुवत, ये क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने अपने फजल से जिसको चाहा, यानी ये अल्लाह ताला का फजल होता है, जिसको चाहे वो चुने। ये मैंने आपको जैसे बताया था ना कि एक बंदे को हमेशा आप इनाम देते रहे, हमेशा देते रहे, हर साल उसको ही इनाम मिलता, जिस साल उसको ना इनाम मिले तो वो कहता है ओ हो, ये जुर्रत कैसे हुई कि मुझे नहीं इनाम मिला, या हमेशा उसको ही बड़ा बनाया गया, मिसाल के तौर पे किसी को ग्रुप मॉनिटर बना दिया गया, हमेशा से उसको बनाया जाता है या हमेशा से उसकी तारीफ की जाती है, अब इस दफा उसको नहीं बनाया। वो कहता है ये क्या, मैं तो छोड़ रहा हूँ सब कुछ, ये क्या बात हुई कि मुझे नहीं इस दफा चूज किया गया। उनका भी प्रॉब्लम यही था ना, इतने अरसे से हम में चल रही है नबुवत, कैसे हो सकता है कि अब इनके अंदर कैसे चल गई, ये हजम ही ना हो उनको बात। और देखें तकब्बुर इंसान को ले डूबता है, ये अपनी बड़ाई का एहसास, मैं कुछ चीज हूं, मैं हूं, ये इसी को तासुब कहते हैं ना, तासुब, प्रेजुडिस होना। और तासुब चाहे नस्ली हो, नस्ल का कि हम बड़ी चीज हैं, चाहे जुग्राफियाई हो, जोग्राफिकली आपकी कोई ऐसी जगह पे रहते हैं आपको उसका तासुब है, या कौमी हो, नेशनलिज्म, हम यहाँ के नेशनल हैं। इस्लाम ने ये सारे तासुब खत्म कर दिए। देखिए ये होने में कोई हरज नहीं है कि जी कोई पंजाबी है, कोई सिंधी है, कोई पठान है, कोई हैदराबादी है, कोई कुछ है, कोई अरबी है, कोई ये, इसमें कोई हरज नहीं है, कोई ये पहचान के लिए है, कोई पाकिस्तानी को लिया ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब कोई कहना शुरू कर दे ना कोई कौम, अब चाहे अपनी जुबान की बेस पे पंजाबी कहना शुरू हो जाए, या पाकिस्तानी कहना शुरू हो जाए, या इंडियन कहना शुरू हो जाए, या कोई एक इलाके के लोग हैं हैदराबाद के रहने वाले लोग हैं, वो हम समझे कि हम है ये हैदराबादी लोग, इतना कहने में कोई हर्ज नहीं है। जाहिर है एक पहचान है, जैसे आपका नाम एक पहचान है, आपका नाम आयशा है, उसमें क्या फर्क पड़ गया, किसी का फातिमा है, अब आपको है? अगर लेकिन जिस दिन आपने ये कहना शुरू कर दिया ना, मैं आयशा, मैं इतनी बड़ी चीज हूं और आप क्या चीज है, बस वो है जो बुरा है, ये है जो तासुब है, जिसको हराम करार दिया गया है, ये है बुरी चीज। आप सरसर ने फरमाया जो तासुब की तरफ बुलाता है वो हम में से नहीं है, हम में से है ही नहीं। तो ये कौमियत को, नेशनलिज्म को उजागर ना, हम ये कौम, हम बड़ी चीज, और इसके ऊपर फूले नहीं समाना, चाहे आप मुंह से ना भी बोले हम बड़ी चीज है, मगर अपने आप को कुछ समझना, ये है तासुब। तो हर किस्म की ऐसी चीज इस्लाम ने मना की है। आपको वो वाकया याद होगा कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गजवे में गए हुए थे, तो उस वक्त एक कुएं के ऊपर मुहाजरीन और अंसार में पानी के ऊपर लड़ाई हो गई। जब लड़ाई हुई तो अंसार के आदमी ने अंसार को पुकारा, ओ अंसारो मेरी मेरी मदद करो, और मुहाजरीन के आदमी ने मुहाजरीन को बुलाया। अब उधर से वो आ गए, उधर से वो आ गए, और अभी करीब था कि गुत्थम गुत्था हो जाते और शदीद लड़ाई शुरू हो जाती, तलवारें निकल जानी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले, आपने फरमाया ये जाहलियत की पुकार, ये जाहलियत की पुकार है, ये यानी ये उस की पुकार है जो जमाने जाहलियत में लोग करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस असबियत को छोड़ दो, ये बदबूदार गली सड़ी चीज है। ये जाहिलियत की पुकार क्या है कि हर एक अपने अपने ग्रोह को बड़ा समझने शुरू जाए, और हम इसके हैं, यानी इंसान ये समझे कि मेरी जो कौम है ना, चाहे वो जुल्म करे, चाहे वो नाइंसाफी करे, चाहे वो हक बोले चाहे ना हक बोले, बस मैं उसके साथ हूं, बस वो ही ग्रेट है, और यहां से मैं हूं तो लिहाजा मैं तो बस, पता नहीं क्या चीज है हम लोग, और हमारे जैसे तो कोई है ही नहीं। बस खानदानों में ये होता है, बस जुबान बोलने वालों में ये होता है, वो मुंह से ना भी बोले ना दिमाग में होता है, और उस वजह से वो हर वक्त ही कहते रहते हमारे अंदर तो ऐसा नहीं होता, ये तो इन लोगों में होता है, ये फलाने ऐसे फलाने ऐसे। हालांकि आप देखें पिछले उसके अंदर या इसमें हमने पढ़ा है ना कि ये जो आया है कि सुम्मा तवल्लई तुम इला कलील मिनकुम, ये 83 आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया सारों ने मुंह मोड़ लिया सिवाय चंद एक के, ये नहीं फरमाया सारे ही बुरे, ये सारे बुरे हैं, ये सारे ऐसे हैं, ये भी क्या ना आसान ही था, सब ने कर दी, नहीं थोड़े ऐसे भी थे जो ठीक थे। तो एक पेंट ब्रश से कभी हम सबको नहीं पेंट कर सकते कि सारे ये ऐसे हैं, और हम अपनी तो सिफते ही बयान करते रहना, हम तो ऐसे, हम तो ऐसे, हम तो ऐसे, और दूसरों को रगड़ते रहना कि वो तो ऐसे, वो तो ऐसे, इससे मतलब है कि आपके अंदर कहीं कीड़ा है ये दिमाग के अंदर कि हम कुछ ग्रेट चीज हैं, हम कोई चीज हैं और दूसरे ऐसे हैं। कईयों ने लतीफे बनाए हुए हैं इस बारे में, कईयों ने कई चीजें कहते रहते हैं। तो ये चीज तासुब उनको ले डूबा था कि हम इतनी फजीलत वाले, हम इतनी बड़ी चीज, हमारे अंदर आनी चाहिए थी ये नबुवत, और ये क्या बात हुई कि इनको मिल गई है। हालांकि अल्लाह ताला की जिधर चाहे अपना फजल करे, उसको कोई रोकने वाला, जिसको चाहे जो मर्जी दे, जिसको चाहे उसको ऊपर कर दे, जिसको चाहे नीचे कर दे, जिसको चाहे कबूल कर दे। इन्ना करामकुम इंदल्लाह ही अतकाकुम, अल्लाह ताला के नजदीक तो सबसे इज्जत वाला वो है जो सबसे ज्यादा मुत्तकी है, और तुमने अपने स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, तुम कौमों के पीछे पड़े हुए, हमारी कौम सबसे ऊपर, हमारा खानदान सबसे ऊपर, हमारे नेशनैलिटी सबसे ऊपर, हमारी हमारी जुबान बोलने वाले सबसे ग्रेट लोग, तो इसको छोड़ दें, क्योंकि यही चीज यहूद के अंदर थी। अमल की बातों में लिख लें, मैंने नहीं आइंदा से ये चीज कहा करनी। फबा उबी गौतबिन अला गौतब, इनके ऊपर अल्लाह का गुस्से पे गुस्सा। बाज तफसीरों में लिखा हुआ है, एक पहला गुस्सा इसलिए था ईसा अलैहिस्सलाम का इनकार किया, दूसरा इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया। ऐसा बात नहीं, बात यह है कि अल्लाह ताला के दो गुस्से की ऐसी ये अलग अलग चीजें नहीं है, अल्लाह ताला का तो गुस्सा ही काफी है। असल में ये इस चीज की ग्रेविटी बताने के लिए कि कितना ज्यादा अल्लाह ताला का गुस्सा इनके ऊपर हुआ, और इस बात की वजह से जो इन्होंने की, ये क्या समझते हैं अल्लाह ताला जो चाहे करे, ये क्या समझते हैं अपने आप को, हमारे हाथ में हमसे पूछा जाए कि किधर अल्लाह ताला नबूवत दे और किधर नहीं दे। हम तो नहीं कभी ऐसे इतराज करते, अल्लाह ताला ने उसको क्यों ये दे दिया। हाँ चलो, अल्लाह ताला का नाम नहीं लेते होंगे, उसको ये चीज क्यों मिल गई, तो अल्लाह ताला का फैसला। उनके यहां बेटे क्यों हो गए, मुझे तो नहीं मिला बेटा, और उनका इतनी प्रमोशन क्यों हो गई, वो इतने ऊपर क्यों चले गए, उन्होंने इतना बड़ा घर क्यों ले लिया, हाय हाय दिल के अंदर इतनी परेशानी। इसी को हसद कहते हैं, और यही हसद उनके अंदर था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हसद जो है, एक दूसरे से हसद ना करो, ये हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। ये हसद ही है जब दूसरे की नेमत जो है ना वो हजम नहीं हो रही, अब अंदर ही अंदर कूड़न जलन और एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, उनसे यही तो हो रहा था। अब क्या प्रॉब्लम थी, जब वो के समझते भी थे, उनको पता भी चल गया था, लेकिन हसद क्यों, इनको क्यों मिला, ये फजल इनको क्यों मिल गया, तो कहीं ये हसद तो नहीं है, यही शैतान को भी हुआ था ना। आदम को क्यों सजदा करने का हुक्म कर दिया, शायद वो चाहता होगा मुझे सजदा किया जाए। आदम को क्यों ये प्रायोरिटी मिल गई, उसको क्यों ये इतनी बड़ा मकाम दे दिया गया। हसद इंसान को खत्म कर देता, उसकी नेकियों को खत्म कर देता। तो हसद किसी से भी ना करे, उसको किसने दिया, अल्लाह ताला ने, तो अल्लाह ताला की तकसीम पे नाराज हो रहे हैं हम कि क्यों अल्लाह ताला ने उसको दे दिया, आप उसके ऊपर नहीं, क्योंकि उसको देने वाला तो अल्लाह है ना। अगर चाहे उसके पास माल आया या औलाद आई या उसको घर बार अच्छा मिल गया, यही दुनिया की चीजें हैं ना जिनमें हम हसद करते हैं, या वो उसको बड़ी नेकनामी मिल गई, या वो आगे निकल गया किसी चीज में भी, या उसके बच्चे बड़े लायक निकल आए, या उसकी बड़ी शोहरत हो रही है अच्छी, उसकी कोई बातें की जा रही हैं, अब हसद होता जा रहा है, ये बड़ी आगे निकल रही, अब उस हसद की वजह से गीबत चुगली लोगों में बैठ के उसको बदनाम करना, फिर किसी तरह उसको तकलीफ देने की कोशिश करना, ये सारे उससे फिर आगे गुनाह फूटते हैं हसद से। फिर इंसान में हसद अंदर थोड़ी रहता है, फिर कभी उसको ताने सुना देना, क्योंकि हसद जो है अंदर, अब चैन तो आ नहीं रहा, अब किसी ना किसी तरह उसको कोई ना बातें लगाते ही जाना, कहीं लेग पुलिंग करना, कहीं कुछ करना, तो ये हसद उनके अंदर था। हसद हमने अपने अंदर से खत्म करना, जिसके पास कोई नेमत देखे अल्लाह ताला से मांग ले, अल्लाह मुझे भी अता फरमा, तूने उसको दिया ही, अल्लाह तेरे खजानों में कौन सी कमी है, तू मुझे भी दे दे, लेकिन हसद मत करें। फबा ऊ भी गदबिन अला गदब, तो इसकी वजह से उनके ऊपर गजब के ऊपर गजब अल्लाह ताला का टूटा है, इतना अल्लाह ताला का गुस्सा है इनके ऊपर। हालांकि आपको हैरान होंगे आप इस बात को सुन के कि हालांकि ये तौहीद वाले थे, इनके अंदर वैसे शिरक नहीं है जैसे कि ईसाइयों के अंदर है। इनका एक फिरका है जो उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहता है, लेकिन वैसे सारे नहीं कहते, जैसे ईसाई तो सारे ही कहते हैं ना, फिर भी इनके ऊपर अल्लाह ताला का कितना गुस्सा, और लानतें हुई हैं, वलिल काफिरीन अजाबुम मुहीन, अल्लाह ताला ने इनको काफिर करार दे दिया, फिर से दोबारा यहाँ पे आए काफरों के लिए, और यहाँ पे इनकी बात आ रही, अजाब है जो रुसवा कुन अजाब है, जलील करने वाला अजाब है, हानत वाला, ह्यूमिलिएशन वाला अजाब है। तो देखें आखरत में अजाब वो भी है जो कि जलाने का है और एक रुसवाई का भी है। तुम बड़े बनते थे ना, तो एक बड़ा जो बनता होता है ना उसको इज्जत बड़ी अपनी प्यारी होती कि मेरी वाह वाह ही रहे, मैं बड़ा ही बनूं, उससे जिल्लत नहीं बर्दाश्त होती, कहता मर जाऊं लेकिन जलील ना हो। अल्लाह ताला उनको वहां पे जलील करेगा जब सारी मखलूक खड़ी होगी। वाइजा खिला लहुम आमीनू, जब इनसे कहा जाता है ईमान ले आओ, किसके ऊपर, बीमा अनजल्ला, साथ उसके जो अल्लाह ने नाजिल किया, कालू वो कहते हैं नु मीनू हम ईमान ले, बीमा उनजिला अलैना, हम ईमान लाते हैं या ईमान लाएंगे उसके ऊपर, बीमा उनजिला अलैना, जो हमारे ऊपर नाजिल हुआ बस। और उन पे क्या नाजिल होता, तौरात, हालांकि उसके ऊपर भी कौन सा पूरा ईमान लाते थे, तौरात पे ईमान लाते तो उसमें तो लिखी हुई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानी, और इंजील में भी है। आप देखें कुरान पाक में अल्लाह ताला ने खुद फरमाया सूरह सफ में, व इज कला ईसा बिन मरियम, जब ईसा बिन मरियम ने फरमाया या बनी इसराइल इन्नी रसूलुल्लाह अलैकुम मुसद्दिकन लिमा बैना यदैया मिन तौरा, मैं तुम्हारे पास रसूल अल्लाह का बना के लाया आया हूँ, भेजा हुआ, मैं तस्दीक करता हूँ उसकी जो पहले आई तौरात और उसके बाद, वह मुबश्शिरन बि रसूलिन, और मैं बशारत देता हूं तुमको एक रसूल की, याती मिम बाद इस्मुहु अहमद, जो मेरे बाद आएगा उसका इसम अहमद है, उसका नाम अहमद है, यानी उनकी किताबों में नाम भी था, वो ये भी जानते थे कि उनका नाम क्या होगा, एक एक निशानी थी, हाल हुलिया भी था, सिफात भी थी, और क्या चाहिए। इसीलिए तो ये यहाँ पे मूव हुए थे कि इनको पता था वो यसरब में हजरत करके आएंगे। तो ऐसा कहीं नहीं है कि कहीं उनको कोई जर्रा बराबर भी कंफ्यूजन थी कि हम उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हो कि हाय बेचारा वो शायद समझ ही ना आई हो, बड़ी अच्छी तरह पता था। लेकिन जो ढीठ होके, पता होता भी है ना ढीठ होके, फिर भी अल्लाह ताला की नाफरमानी करता रहता है ना, अपने चाहे तकब्बुर की वजह से, हसद की वजह से, तो फिर वो मुश्किल ही रह पाता है, क्योंकि जो सीखना चाहता है समझना चाहता है उसको तो आप राह बता सकते हैं, लेकिन जिसको पता हो और ढीठ बना हो उसको तो आप ये भी कहेंगे सूरज निकला उसने क्या ना, मैंने मानना ही नहीं, अब वो ढीठ बना हुआ आप क्या करेंगे। तो जो जब उनसे कहा जाता है ईमान ले आओ, जो अल्लाह ताला ने नाजिल किया यानी कुरान पाक पे ईमान ले आओ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान ले आओ, तो कहते नहीं नहीं जो हमारे पास नाजिल हुआ ना हमने तो बस उसको माना, वह यकफुरुना बिमा वराहु, और जो इसके अलावा है जो भी इसके अलावा है बस हमने वो नहीं माना, वहुअल हक, जबकि वो हक के, हालांकि कुरान तो हक के, हक को मानना चाहिए ना, ये ना देखो कि भाई किसके पास क्या चीज है, देखो कि क्या बताया जा रहा है वो हक है कि नहीं, मुसद्दिकन लिमा माहुम, और फिर बात वो आई कि तस्दीक करता है जो उनके पास है, तौरात की तस्दीक करता है, जबकि ऐसा है फिर भी ये नहीं मान रहे। कुल आप इनसे कह दें, अच्छा अगर तुमने उसी के ऊपर ईमान रखना है और तुम रखते हो ईमान जो तुम्हारे पास नाजिल हुआ, फिर फलिमा तख्तुलूना अंबिया अल्लाह मिन कब्ल, फिर तुमने उनको क्यों कतल किया जो तुम्हारे पास नबी आए थे, इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम इतने ही ईमान वाले हो, तुम्हारे पास अंबिया आए तुम कहते जो हमारे पास आया बस हम तो वो मानते, तो फिर नबियों को क्यों कतल करते थे, वो तो तुम्हारे पास हक ही लेकर आते थे ना, तुम्हारे में से ही आए थे, फिर तुम्हारी हिस्ट्री ऐसी क्यों है। तो देखें एक एक उनका जुर्म खोल खोल के बयान कर दिया गया, और हमारे लिए बहुत बड़ी इसके अंदर तन्बीह है, बहुत बड़ी इसके अंदर सबक की बातें हैं। तो हमारे पास तो कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आना, उलमा को मगर उनके नबियों के वारसों को कत्ल किया जाता है, आज भी उनको धमकियां दी जाती हैं, कोई हक बात बताए तो उसके ऊपर लोग आग बगोला होते हैं, उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, तो उनको कहा गया अगर तुम्हारा दावा सच्चा है ना इतना ही तो फिर बताओ तुमने क्यों कत्ल किया नबियों को। अल्लाह ताला हमें कबूल हक की तौफीक अता फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين